ओम शांति। बाबा की बहुत श्रेष्ठ प्रेरणाएं हम सभी ने सुनी कल, माताओं को विशेष ध्यान में रखते हुए बाबा ने बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी, आशाएं भी रखी हैं और हम सभी को बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है तो कुछ बातें अपने जीवन में अपनानी हैं। मैं आप सभी को दो धारणाओं की बातों पर ध्यान दिलाऊंगा और कुछ ऐसे योग के अभ्यास जिनके द्वारा आप सभी अपनी पारिवारिक समस्याओं को सहज हल कर सकें, क्योंकि जैसे जैसे विनाश काल समीप आ रहा है घर घर में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जब तक समस्याओं से आत्मा मुक्त न हो तब तक योग भी नहीं लगता, खुशी भी नहीं होती, मन के सारे अरमान अधूरे रह जाते हैं। इसलिए समस्याओं का समाधान वो भी अलौकिक रूप से संकल्पों की शक्ति से बाबा की याद से स्वमान से कैसे होता है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपके सम्मुख आएंगी, आप सभी उसका अभ्यास करना। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो आया है, बहुतों का क्वेश्चन होता है कि जब हम योग करते हैं थोड़ा पावरफुल करते हैं तो सिर दर्द होता है, ये मस्तिष्क की कुछ कमजोरियों के कारण होता है और उनको होता है जो योग में अपने ब्रेन पर दबाव ज्यादा डालते हैं, जबरदस्ती जैसे करते हैं। तो योग अभ्यास सहज भाव से करना है जिनको सिर दर्द होता हो, और जब सिर दर्द हो तब उस तरह के योग अभ्यास को छोड़ देना है। स्वमान का अभ्यास करेंगे या देह से न्यारा होने का, जिसको भी योग में सिर दर्द होता हो वो देह से न्यारा होने का ज्यादा अभ्यास करें और स्वमान का, धीरे धीरे दर्द भी खत्म हो जाएगा और ब्रेन पर दबाव न दे, जैसे जबरदस्ती योग न करें। अब हम सबसे पहली बात ले रहे हैं मेरा बाबा। सिंपल बात है, बाबा ने अनेक बार कहा है ये, लेकिन इसी एक बात में बहुत ही गहराई है और बहुत सुंदर अनुभव है। संगम युग पर हम सभी को ये बहुत बड़ा भाग्य मिला है कि हम बाबा के बहुत समीप आ गए हैं। क्या अनुभव है सभी का, समीप हैं, इतने समीप कि वो हमारा हो गया, मेरा बाबा कहने का अधिकार हमें मिल गया, भगवान हमारा है। इस बात को सभी अपने अंतर मन में समा लें। अब वो हमारे लिए भगवान नहीं, मेरा है, अपनापन उससे बढ़ाते चलें। और इसके लिए आवश्यकता है रोज अच्छे चिंतन की कि वो मेरा है। मैं हमेशा ये बात याद दिलाया करता हूँ बाबा की, आप सबने सुनी होगी, बाबा ने ही कहा था कि तुम भक्ति में मुझे केवल ये कहते थे कि हे भगवान जब तुम आओ हमें अपना बना लेना। मैं आया और तुम्हें अपना बना लिया, लेकिन एक बात जो तुमने कभी मांगी नहीं थी, सोची नहीं थी, वो कर दी मैंने कि मैं भी तुम्हारा हो गया हूँ। इस संगम युग पर बहुत सुंदर अनुभव करने हैं इसमें कि बाबा हमारा है। जब वो हमारा है तो इस पे हमें तीन बातों का चिंतन करना है। वो मेरा है तो उस पर अधिकार, अधिकार की फीलिंग, बहुत ध्यान देंगे इसका सभी दूसरा प्यार, अपनों से ही प्यार बढ़ता है। प्यार का सागर हमारा हो गया तो उससे हमारा बहुत प्यार हो जाता है, यदि हम उसे अपना मान लें। और तीसरा, वो हमारा है तो उसके लिए हमारे कर्तव्य क्या हैं? तीनों बातों पर चिंतन करना है, अधिकार, प्यार और कर्तव्य। बहुत समीप आ जाएंगे बाबा के, अनुभव होने लगेगा कि बाबा पर हमारा अधिकार होने लगा है। केवल उसके वर्षे पर ही अधिकार नहीं, स्वयं बाबा पर अधिकार, सर्वशक्तिवान पर अधिकार, भाग्य विधाता पर अधिकार, बहुत कुछ कर सकेंगे इस अधिकार में। जैसे आप सभी को लौकिक में अनुभव है, आपके बच्चे आप पर अधिकार रखते हैं, कुछ भी मांग लें, जिद करने लगे तो बच्चों को देना पड़ता है ना, चाहे उधार पैसे लेके भी देना पड़े, उनकी जिद आपको पूरी करनी पड़ती है। हमारा भी बाबा पर अधिकार है, हम उससे बहुत कुछ प्राप्त करा सकते हैं। मैं एक भारत के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं नामदेव, उनकी एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था। तो नामदेव एक बार पंजाब की तरफ चले तो सभी संत मंडली को प्यास लगी थी, तो संत ज्ञानेश्वर भी साथ थे, वो तो कुएं में नीचे गए, पानी पिया और दूसरों के लिए भी ले आए। नामदेव को कहा तुम भी पी लो, उसने कहा मैं क्यों पी लूं, मेरे श्री कृष्ण को यदि पता नहीं है कि मुझे प्यास लगी है, ये तो उसका काम है मेरी प्यास बुझाना, मैं क्यों पीऊं? अगर मेरा उससे प्यार है, उसका मेरे से प्यार है, तो वो खुद मुझे पानी पिलाए ना। देखो एक भक्त की बात। और देखते ही देखते कुआं भरने लगा, पानी ऊपर आ गया, बाहर बहने लगा, और तब नामदेव ने पिया। मैं सोच रहा था कि यदि भक्त भी अधिकार में भगवान को बांध सकते हैं तो क्या हम नहीं बांध सकते? लेकिन इसके लिए चाहिए इतना प्यार और अधिकार। इन दो चीजों पर आप बहुत अटेंशन देंगे, कर्तव्य पर भी, पर अधिकार की फीलिंग को बढ़ाते चलें। भगवान मेरा है, समस्याओं को लेकर आपको किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अधिकार से बाबा से ही सब कुछ करा सकेंगे। बाबा चुटकी बजाते ही सभी समस्याएं हल कर सकता है, हम जानते हैं, उसके पास अनंत शक्तियां हैं, हम उसको अपने प्यार में बांधना सीख लें। माताएं बाबा को प्यार में जल्दी बांध सकती हैं, बांध सकती हैं या नहीं? हमने तो देखा है माताओं के पास बाबा को आते हुए, मैंने ये अनुभव सुनाया है एक बांधेली माता का, उसने मुझे पत्र लिखा कि मेरी बहुत बाबा के पास आने की इच्छा है, पिछले सीजन की बात है, उसको नहीं आने दिया, रोक दिया परिवार वालों ने, मेरे को लिखा, मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया था कि बाबा को तुम इतना याद करो, बाबा रात को तुम्हारे पास आ जाए, यहाँ तो बाबा दूर से मिलेगा, दृष्टि दूर दूर पहुंचेगी, बाबा तुम्हारे पास आ जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ उसको, उसने योग किया बाबा के दिन, और रात को स्वप्न में उसके पास बाबा बहुत देर तक रहा, था तो वो स्वप्न, पर उसको ऐसा ही लगा कि वो यहाँ आई है और बाबा से बहुत देर तक मिली है, दृष्टि ली है, बातें की हैं। ये है भगवान को प्यार में बांध लेना। और ये काम भाइयों की अपेक्षा माताएं ज्यादा अच्छा करती हैं, करती हैं या नहीं? आप सभी को बांध लेना है बाबा को। लेकिन बहुत अच्छा चिंतन आप सभी करेंगे, मेरा बाबा, ये तो कहना भी हम सभी ने सीखा है, संसार के बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, गुरु ये कहना भी नहीं जानते कि भगवान मेरा है, सर्वशक्तिवान ही मेरा है। बाबा साकार में भी कहते आए कि बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, कि भगवान स्वयं तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। खुद ही मुट्ठी में आ गया हो तो मुट्ठी वालों को क्या करना चाहिए, ये सभी सोच लें। हमें क्या करना चाहिए जब भगवान स्वयं सहज रूप से हमारे इतने समीप आ गया है, मेहरबान हो गया है बाबा सभी पर। सभी अपने अपने से बातें करें, भगवान मेहरबान है, उसकी इस मेहरबानी का फायदा उठाना हमें आना चाहिए। इसी के साथ अब मैं आप सभी को एक धारणा की ओर ले चलता हूँ। मेरे आगे माताएं बैठी हैं, लेकिन भाइयों के लिए भी ये सभी बातें हैं। हम अपने जीवन को बहुत सरल बनाएं, और इसके लिए एक धारणा बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी बात को छोटा करना। योगी आत्मा का मुख्य लक्षण सरलता है। इस बार बाबा ने अपनी अंतिम अव्यक्त मुरली में ये बहुत अच्छी बात कही थी सार की, कि जिन आत्माओं को बहुतों की दुआएं प्राप्त हैं, उसकी निशानी है वो बहुत हल्की होंगी। हल्का रहना योगियों की पहचान है, क्योंकि जब तक हम हल्के नहीं हैं, संकल्पों के युद्ध में हमारी शक्ति नष्ट हो रही है, तब तक हम इन अलौकिक चीजों का अनुभव नहीं कर सकते। अपने में ही, अपने युद्ध में ही हमारा समय और शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने पारिवारिक जीवन में सभी इस बात का अभ्यास करें, बड़ी बात को छोटा कर दें। इसके लिए थोड़ा सा चिंतन, ऊंचे विचार, अच्छा स्वमान होना चाहिए। हम बहुत बड़े हैं, हमारे सामने संसार की हर बात छोटी है। घरों में जो रोज बातें होती हैं, हर घर में रोज बहुत सारी बातें होती, एक नहीं दसियों बातें रोज होती हैं। अगर आप आदत बना लेंगे हर बात को छोटा कर देना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि सारे दिन में कोई समस्या घर में आई है क्या। आपको लगेगा हमारा जीवन पूरा निर्विघ्न है, क्योंकि मनुष्य ज्यादा सोच सोच कर छोटी छोटी बातों को बढ़ा देता है, उससे शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, विघ्न बहुत प्रबल हो जाते हैं। जो बहुत छोटे थे वो शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने तो हम सभी को बहुत बड़ा स्वमान दिया है। मैं आपको बाबा का एक महावाक्य याद दिला दूं, अव्यक्त महावाक्य है, पीछे ही आया है रिवाइज में, कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, और जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, उनके सामने विघ्न ऐसे ही हैं जैसे हाथी के सामने चींटी। हाथी शक्तिशाली, चींटी जैसे कुछ भी नहीं। अगर हम इस नशे में रहें, मैं शिव शक्ति हूँ या मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो स्वतः ही पहाड़ जैसे विघ्न चींटी जैसे बन जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये बात समझ लेने की है कि हमारे स्वमान में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, जो स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं, उनको अपने अंदर लाते हैं, तो हमें और कुछ नहीं करना पड़ता, हमारी शक्तियां सब कुछ स्वतः ही कर देती हैं। तो बहुत अभ्यास बढ़ाएंगे, मैं शिव शक्ति हूँ। आप सभी माताओं को मैंने बहुत माताओं से एक अभ्यास कराया है, और जिससे उनकी घरों की समस्याएं बिल्कुल लगभग समाप्त हो गई हैं। मैं इष्ट देवी हूँ, ये दो स्वमान शिव शक्ति और इष्ट देवी जुड़े हुए हैं। इनका अभ्यास यदि आप अपने घर में कर लें, आपको अनुभव हो जाएगा कि सभी लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। जितना सम्मान पत्थरों की इष्ट देवियों का हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा सम्मान चेतन इस देवियों का हो जाएगा यदि उस स्वरूप में रहने लगे। स्वरूप में रहने का आधार है उसकी स्मृति। मैं इष्ट देवी हूँ, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है वो मैं हूँ, जो अष्टभुजाधारी है वो मैं हूँ, जो सबको वरदान दे रही हैं वो मैं हूँ, जिनसे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं वो मैं हूँ। ठीक है ये बात। जिनके मंदिरों में जाते ही सबको शांति मिल जाती है, जिनके दर्शन करने से लोगों के बिगड़े काम संवर जाते हैं वो मैं हूँ, ये चिंतन है। ऐसे चिंतन और नशे में यदि आप आएंगे तो जिस घर में एक इष्ट देवी रहती हो उस घर में कोई आपदा विघ्न आएगा ही नहीं। चाहे वो भूत प्रेतों के विघ्न हो, शारीरिक बीमारियों के विघ्न हो, तंत्र मंत्र के विघ्न हो, पड़ोसियों के द्वारा पैदा किए गए विघ्न हो, सभी नष्ट होने लगेंगे इस स्मृति में रहने से। लेकिन बहुत अच्छी कम से कम 10 बार कम से कम रोज इसको अपने अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी को एक बात कहूंगा कि सभी भाई बहने भट्टी में आए हैं, यहीं पर अपने रोज के पुरुषार्थ का एक बहुत सहज प्लान बनाकर जाएं कि हम सारे दिन में कामकाज में रहते हुए अच्छे से अच्छा अभ्यास क्या कर सकते हैं, यही प्लान बना लेंगे। तो यदि एक अच्छा प्लान होगा, मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाएंगे, तो सारा दिन कामकाज में रहते हुए सहज रूप से अभ्यास करेंगे। खाना बनाना है उससे पहले क्या अभ्यास कर लेना है, चाय बनानी है उससे पहले क्या अभ्यास कर लेना है, छोटे छोटे काम जो सारा दिन आप करते हैं, सफाई करनी है क्या अभ्यास कर लेना है, भाई लोग भी घर से बाहर चलते हैं क्या अभ्यास करें, रास्ते में क्या अभ्यास करें, ऑफिस में जाएं क्या अभ्यास करें, बिजनेस है तो दुकान पर क्या अभ्यास करें, ऐसी एक अपनी मन बुद्धि की दिनचर्या यहीं पर सभी सेट करके जाएं। तो एक विशेष अभ्यास जिस पर सभी को ध्यान देना है, स्वमान। रोज नया नया लिया जा सकता है और इसके लिए बाबा के बहुत बहुत महावाक्य हैं, अव्यक्त मूल्यां भरी पड़ी हैं स्वमान से, कि जो बच्चे स्वमान में रहते हैं सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलता है। जो स्वमान में रहते हैं मनुष्य तो क्या, उन्हें स्वयं भगवान भी प्रकृति भी सम्मान देती है। इतना बड़ा महत्व है स्वमान का। इसके द्वारा आप अनेक समस्याओं को हल कर सकेंगे। आपके पास विघ्न आ रहे हैं, मैं विघ्न विनाशक हूँ, आपको अपने संस्कार बदलने हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, अपने में शक्तियां भरनी हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सबकी पालना करनी है, मैं पूर्वज हूँ, बिल्कुल हल्का हो जाना है, मैं फरिश्ता हूँ। ये अभ्यास करें आप, केवल स्मृति में लाएं। शुरू में यदि आपको कोई अनुभव नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहें, जल्दी अनुभव होगा। अब एक दूसरी धारणा, समय तेजी से आगे बढ़ रहा है विनाश की ओर। संसार में विघ्न और समस्याएं भी बहुत तेजी से बढ़ेंगी। बाबा ने कह दिया सब कुछ अति में जा रहा है, इसलिए हमें अपने जीवन में बहुत अच्छा अभ्यास कर लेना है साक्षी भाव का। जो कुछ हो रहा है वही होना है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। अपने घर में बैठकर अपने सारे परिवार पर एक नजर डाला करें, ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। ये संसार बना बनाया खेल है, इसे खेल की तरह देखो। चिंतन एक टाइम निश्चित कर लें, रोज केवल एक बार, कोई भी टाइम निश्चित करें जब आप 3 मिनट इस संसार को, सब आत्माओं को साक्षी होकर देखेंगे। आपके घरों में जो आजकल कलयुग के अंत में एक समस्या बहुत बढ़ी हुई है, घर घर में संबंधों में टकराव, कड़वापन, प्यार और मधुरता की बहुत कमी, इसको आप दूर कर सकते हैं। बहुत सिंपल अभ्यास है, आप सब जानते हैं, लेकिन अभ्यास करने की बात है। आत्मिक वृत्ति, सभी आत्माएं हैं, इसकी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे आप, चमत्कारिक प्रभाव है इसमें। जिसको आप आत्मा देखेंगे उसकी ओर आपके वाइब्रेशंस जाएंगे। आत्मा देखना अर्थात दूसरों को सकास देना, आपके वाइब्रेशंस चलेंगे। और आत्मा देखने के साथ यदि आपके चित्त में उस आत्मा के लिए प्यार और सुभावना भी आ जाए तो दूसरे का परिवर्तन तुरंत होने लगेगा। बहुत बड़ी शक्ति है योगी आत्माओं के प्यार और सुभावना में। हमारे मन में थोड़ी भी घृणा आ जाती है किसी के लिए, संबंध बिगड़ने लगते हैं। हमारी घृणा भी वैसे ही खतरनाक है। योगी युक्त आत्माएं अगर दूसरों के लिए घृणा करें, दूसरों के लिए अकल्याण की भावना पैदा करें, तो उनका अकल्याण भी बहुत जल्दी हो जाएगा। वो काम हमें नहीं करना है, हम कल्याणकारी हैं। आत्मिक दृष्टि शुभ भावना से संबंधों को बदला जा सकता है। बाबा ने तो कहा शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है, इतनी बड़ी शक्ति है इसमें। आग को पानी में बदला जा सकता है आत्मिक दृष्टि। संसार में आज तक ये किसी ने नहीं सिखाई, केवल बाबा के। बाबा ने हमें आत्मिक दृष्टि और वृत्ति रखने का बहुत सुंदर साधना, इसको हम कह दें तपस्या, सिखाई है। इस पर भी सभी ध्यान देंगे। प्रश्न भी आया है एक, और आजकल सभी की आवश्यकता भी है। शरीर में सभी के कोई न कोई बीमारियां लगी हुई हैं, डॉक्टरों के पास भी बहुत जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां डॉक्टरों से भी ठीक नहीं होती। बाबा ने एक बहुत सुंदर अलौकिक सा तरीका बताया है बीमारियों को ठीक करने का। आप जानते हैं आजकल डॉक्टर भी इस बात को मानने लगे हैं कि ज्यादा बीमारियां मन से पैदा हो रही हैं, कमजोर मन, निगेटिव मन, बहुत खराब खराब संकल्प जब मन में आते हैं तो अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। इन सब को हम अपने मन को शक्तिशाली बनाकर ठीक करेंगे, लेकिन एक और अभ्यास है इसके लिए। यही अभ्यास हमारी पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी है। 10 मिनट आप योग में बैठें और एक ड्रिल करेंगे, 1 मिनट के लिए बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा को आ रही हैं, 1 मिनट सफेद किरणें, आत्मा उनको ग्रहण कर रही है। और उसके बाद 10 सेकंड के लिए सारे शरीर में फैल रही हैं, जहां दर्द है, जहां रोग है, वहां पहुंच रही हैं वो, और उस रोग को ठीक कर रही हैं, ऐसा संकल्प करेंगे। फिर 1 मिनट बाबा से पवित्रता की किरणें लेंगे, आत्मा से शरीर में फैलने देंगे, देखेंगे इसको, किरणें आ रही हैं, शरीर में फैल रही हैं। रोज ऐसा करते रहें सवेरे शाम 10-10 मिनट, योग भी हो जाएगा, पवित्रता की शक्ति भी आएगी और निरोगी भी होते जाएंगे। क्योंकि हमारा जो प्रकृति 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसमें सारी बीमारियों का एक ही कारण है। अगर मूल में जाएं, तमो प्रधान प्रकृति, अपवित्र प्रकृति। यदि इस प्रकृति को हम पवित्र वाइब्रेशंस देने लगें, तो हमारी प्रकृति ठीक हो जाएगी, सहयोग देने लगेगी हमें। ये अभ्यास भी सभी करते रहें। तो बड़ी बात को छोटा करना, फिर मैं उसी बात पर आ जाता हूं। सभी बहुत ध्यान देंगे, मैं सभी माताओं को एक बात कहूंगा, सोचना आपको स्वयं है, मुझे केवल कहना है। क्या कहना है? कि जिन्हें शिव शक्ति बनना हो, जो बाबा के काम आना चाहते हैं, भगवान हमारे काम आया है, हम उसके काम आ जाएं, जो भगवान के काम आना चाहते हैं, जो शिव शक्ति बनना चाहते हैं, जो विजयी रत्नों की लिस्ट में आ जाना चाहते हैं, वो एक चीज से बिल्कुल बाहर निकल जाएं, छोटी सी चीज है वो, लेकिन आत्माएं निकल नहीं पा रही हैं, बातों के संसार से परे। बातें, कुछ कुछ माताओं के पास तो इतनी बातें हैं कि दो चार ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, रामायण महाभारत से भी बड़ा। अगर माताएं आपस में मिल जाएं तो उनकी बातें खत्म नहीं होती, 10 दिन भी साथ रहेंगी तो बातें ही बातें हैं। ये चीजें सबके पास नहीं है, कुछ महान आत्माएं भी तो आप सभी बैठे हैं यहाँ, लेकिन जिन्हें बहुत महान बनना है, जिन्हें बड़ी बात को छोटा करना है, जिन्हें फरिश्ता बनना है, जिन्हें अपनी संकल्प शक्ति की कदर है, जिन्हें पता है कि संकल्प शक्ति के द्वारा इस संसार को बदला जा सकता है, अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त किया जा सकता है, संकल्प शक्ति को बचाने के लिए बातों के विस्तार से परे रहें। वो आत्माएं शिव शक्ति बन जाएंगी, उनकी पूजा होने लगेगी। अभी अभी संगम युग पर ही वो प्रत्यक्षता के समय में इष्ट देवियां बनकर विश्व की स्टेज पर प्रकट हो जाएंगी, जो अपने को बातों से मुक्त कर चुकी होंगी। अब आपको सोचना है कि आपको बातों में रहना है या बाबा के साथ, क्या प्रिय है। हर एक आत्मा स्वयं चिंतन करे, बातें ज्यादा प्रिय या बाबा का साथ प्रिय। जिस भगवान को दो युग से तड़पते तड़पते तरसते तरसते इंतजार किया है, जब उसका हमें साथ मिला हो, जब वो सब कुछ देने के लिए हमारे द्वार पर आ गया हो, तब हमें बातें प्रिय हैं या उसका साथ। खुद सोच लें और क्या करना है ये भी निर्णय सभी स्वयं कर लें। तो अपने घरों में जो कुछ भी हो जाए, छोटी बातों में तो ठहरना ही नहीं है, लेकिन बड़ी बात भी हो जाए तो बाबा का ये महावाक्य है, जो हल्के रहते हैं उनकी समस्याएं भी हल्की हो जाती हैं, उनकी बीमारियां भी हल्की हो जाती हैं, संस्कार भी हल्के हो जाते हैं, संबंधों में भी हल्कापन रहने लगता है। और जो बात बात को भारी कर देते हैं, उनका योग टूटता रहता है। छोटी बातें समस्या बनकर सामने आती हैं, बड़ी बन जाती हैं, और मनुष्य उस जाल में स्वयं को फंसा लेता है, बुद्धि फ्रेश नहीं रहती। इसलिए जिनको सच्चे अच्छे और महान योगी बनना है, उनको तो इस संसार में ऐसे ही रहना होगा जैसे वो इस संसार में नहीं रहते, जैसे उन्हें कुछ याद नहीं। बाबा ने साकार मुरलियों में ही योगियों की ये पहचान बताई है, योगी अर्थात जिनको कुछ भी याद न रहे। ऐसा नहीं पास्ट हमें परेशान करता रहे, बातें हमारी खुशी को नष्ट करती रहें। इसलिए हम अपने ज्ञान को इतना अधिक बढ़ाएं कि हमारा मन क्या क्यों से मुक्त हो जाए। ज्ञान का बल, बहुत सुंदर बल हमारे पास है, इसको हमें बढ़ाना है। सभी को याद रखना है, आप सभी पुराने भाई बहने यहाँ बैठे हैं, बहुत बहुत पुराने भी हैं, कोई 40 साल के, 35 30 साल के भी हैं, अपने इस जीवन में इस समय ज्ञान की शक्ति भी बहुत भरनी है। आप इस भट्टी से ही 10 संकल्प 10 महावाक्य ज्ञान के चुन लें, अपने पास लिख लें उन्हें, जिनका प्रयोग आपको अपने रोज के जीवन में करना है। रोज के जीवन में 10 लिख लें, उन्हें पढ़ते भी रहें ताकि याद रहें। वो ज्ञान तो भंडार है, लेकिन उसको 10 बातों में समा दें। उदाहरण के लिए, बाबा ने इस ड्रामा का ज्ञान देकर हम सभी को कह दिया, ड्रामा कल्याणकारी है। हमने सुन लिया बहुत अच्छी तरह, हम इसका अभ्यास करें। भगवान ने कहा ड्रामा कल्याणकारी है, और हम में से अनेक आत्माओं को लगता है कि मेरा ड्रामा तो कल्याणकारी नहीं है, ये विघ्न है, क्लास में भी मुझे नहीं आने देते। आज बाबा की मुरली सुनी ना बांधेलियों के लिए, बाबा ने कहा ना बांधेली पूछती है पति हमें बहुत मारता है, बाबा ने सीधा ही कह दिया तुमने मारा होगा कभी तो बदला लेता है। तो हम जो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले हैं, उन्हें ये जानना ही चाहिए कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। हमें यदि वो कल्याणकारी दिखता है तो ये हमारे देखने की गलती है। हम हद की दृष्टि से देखते हैं, हम स्वार्थ की भावनाओं से ड्रामा को देखते हैं, बेहद की दृष्टि से, विशाल दृष्टिकोण से यदि ड्रामा को देखेंगे तो हमें सब कुछ कल्याणकारी नजर आएगा, क्योंकि भगवान ने कहा ये कल्याणकारी है। इस बात का जीवन में अभ्यास करें। जब कुछ भी हो जाए तो इस बात से अपने मन को शांत कर दें कि ड्रामा कल्याणकारी है। ऐसे ही ड्रामा के बारे में ही दूसरी बात बाबा ने कह दी, सभी आत्माओं का अलग अलग पार्ट है। इस पे यदि आप चिंतन करेंगे तो जीवन में ये एक महावाक्य बहुत काम आता है, जो दूसरों का पार्ट है वो मेरा नहीं हो सकता। मुझे जो पार्ट मिला है वो मेरे से अच्छा कोई और नहीं बजाएगा, दूसरों को जो पार्ट मिला है उसको वही अच्छा बजाएंगे, मैं नहीं। इसलिए किसी के पार्ट को देखकर ईर्ष्या करना, इससे हम मुक्त हो सकते हैं यदि हम इस बात पर चिंतन बढ़ाएं कि ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और मेरा पार्ट भी बहुत सुंदर है। अपना पार्ट प्रिय लगे, अपने पार्ट को आनंद पूर्वक बजाएं, यदि ये कला आत्मा सीख ले तो जीवन आनंद से भर जाएगा। सीखनी है ये कला, और अपने पार्ट को स्वयं आनंदित करना भी है, और उसमें वही बात बहुत काम आएगी, बड़ी बातों को छोटा करना, बातों में उलझ कर न रह जाना। कौन क्या कह रहा है, इसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कहा, उसने ये किया। जो आत्माएं इतना महान ज्ञान पाकर भी इसमें उलझ गई, उनका ज्ञान भी उलझ कर नष्ट हो जाता है। अपने को उलझाना नहीं है, बातों में क्या और क्यों से मुक्त कर देना है। इस तरह की 10 बातें आप अपने पास लिख लो। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, बिल्कुल सरल और सबसे पावरफुल, हमारे कानों में सदा ही गूंजती रहे कि बच्चे चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी कोई बात आ जाए, आप बाबा का सीन अपने सामने इमर्ज कर लेना। बाबा सामने बैठा है इस हॉल में या ओम शांति भवन में, आप उनके सामने हैं। आप में तो पुरानी कई माताओं ने बाबा से, अव्यक्त बाबा से स्टेज पर खड़े होके दृष्टि ली होगी, बाबा ने कुछ वरदान दिया होगा। उस सीन को याद करके ये महावाक्य याद कर लेना कि बाबा कह रहा है बच्चे चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात हल्की हो जाएगी। भगवान जब साथ दे रहा हो फिर और किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती। अंतिम बात सभी के लिए है, बहुत सुंदर है जो सब बातें ये मैंने आपको बताई, ये सब मैं बहुत अच्छा अभ्यास करता रहा हूँ और आजकल मेरा बहुत सुंदर अनुभव बाबा मेरा है, उस पर अधिकार की फीलिंग का बहुत अच्छा अनुभव रहता है, रोज अच्छे से अच्छा होता है। मेरा है तो उस पर अधिकार है और बहुत समीप है, हम दोनों दूरी नहीं। एक और अच्छा अनुभव जो पिछले साल से हो रहा है, बाप दादा का आह्वान करना। मैं ये बात अपने समस्त ब्राह्मण परिवार को सिखा देना चाहता हूँ। बाबा ने वायदा कर लिया है तो मुझे जहाँ जिस समय जिस स्वरूप से याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। सुना होगा सभी माताओं ने भाइयों ने, ये वायदा है भगवान का, हजूर हाजिर हो जाएगा, तुम बस बुलाओ। तो आप सभी अपने घरों में कई बार रोज बाप दादा को दोनों को बुलाया करो। भोजन आप बनाना शुरू कर रहे हैं, योग में बैठो 3 मिनट, ये नियम बना लो, यहां से शिव बाबा के पास पहुंचो, उसे निमंत्रण दो, दोनों को निमंत्रण दो और फिर देखो ये सीन के दोनों उतर कर आपके घर में आ खड़े हुए हैं। शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के तन में आपके सामने खड़े हैं, आपको दृष्टि दे रहे हैं, बाबा से चारों ओर किरणें फैल रही हैं। सीन इमर्ज करो, अभी बाप दादा नीचे आ गए, उनसे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। 1 मिनट तक करो ऐसा, और अगर आप कुछ बार कर लें दिन में, 5 बार कर लें सवेरे शाम और 3 बार भोजन बनाने से पहले, भाई भी ऐसे ही अपना समय निश्चित कर लें, 1-1 मिनट करें, आपको कुछ दिनों में ऐसा ही लगने लगेगा कि बाबा से मिलन होता है आपका रोज 5 बार, ऐसी सुखद फीलिंग हो जाएगी और लगने लगेगा जिस घर में रोज 5 बार भगवान उतर आता हो वो घर क्या बन जाएगा, महान तीर्थ, वहां विघ्नों का नाम नहीं रहेगा, ईश्वरीय वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाएंगे, जो भी आपके घर में आएगा उसको उसी तरह की अनुभूति हुआ करेगी, किसी को शांति की, किसी को अलौकिक प्रेम की, अलौकिकता का आभास होने लगेगा। ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे अपने पुरुषार्थ को भी बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है और अपने पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत जीवन में आने वाली समस्याओं को भी समाप्त किया जा सकता है। सभी को सहज स्पष्ट है ना ये बातें, आप सभी पुराने ज्ञान में हैं, बात केवल साधनाओं की है, बार बार अभ्यास करने की है, इसलिए हमें बार बार कहना नहीं है ये विघ्न है ये विघ्न है, बल्कि विघ्नों का समाधान है श्रेष्ठ स्थिति। इसलिए मैं आपको अंतिम बात कह के समाप्त कर देता हूं कि आप यहां से एक मंत्र ले जाएं अपने पास कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगे। स्थिति श्रेष्ठ होते ही परिस्थिति स्वतः ही बदल जाएंगी। हम अपनी स्थिति को ही नहीं बिगाड़ेंगे, दृढ़ता ले आए अपने में, इसको अपने जीवन का एक मूल मंत्र बना लें, तो बस ये संकल्प ही काफी रहेगा। कुछ भी हो जाए, संसार इधर से उधर हो जाए, ठीक है, गंगा नदी हिमालय से उतरने के बजाय हिमालय की ओर चढ़ने लगे, सूरज पूरब में उगने की बजाय पश्चिम में उत्तर पूरब को जाने लगे, ठीक है, लेकिन हम स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगे। परिस्थिति आपके सामने प्रणाम करने लगेंगी, सब कुछ बदल जाएगा। ओम शांति। अभी हम 3-4-5 मिनट योग अभ्यास करते हैं, वही योग करेंगे जो मैंने आपको कहा। आप सब जानते हैं योग अभ्यास को बहुत अच्छी तरह। बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें लेना, आत्मा में भरना, शरीर में फैलाना। पवित्रता का बल भी मिलेगा और शरीर के रोग भी समाप्त हो जाएंगे।